प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार और इसके लेखक स्वयं मलाकी हैं। इस पुस्तक का नामकरण भी नबी के नाम पर किया गया है। मलाकी के नाम का अर्थ है मेरा संदेश वाहक। मलाकी ने बारंबार परमेश्वर की सार्वभौमिकता के विषय में कहा कि परमेश्वर पिता है, स्वामी है, महान राजा है, वो स्वर्गिक राज्यपाल है, वो वाचाएं तथा आज्ञाएं देता है, यद्यपि वो पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है। तो आइए श्रोता, आज सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा पर ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
हरने वाला हृदय में शांति भरने वाला
दिनों का दुख हरने वाला हृदय में शांति भरने वाला
जय जन रंजन जय दुख भंजन
जय जन रंजन जय दुख भंजन
जय जयकार सृजन नर्तन धार लियो अब तारा दैनिज प्राण की ओ छुटकारा
नर्तन धार लियो अब तारा दैनिज प्राण की ओ छुटकारा
जय जग त्राता जय सुख दाता
जय जग त्राता जय सुख दाता
जय जय के बंधन भंजन हारा अक्षय जीवन देवन हारा
के बंधन भंजन हारा अक्षय जीवन देवन हारा
रोगिन शोकिन एक आधारा
रोगिन शोकिन एक आधारा
जय जयकार
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक के अंतिम पुस्तक मलाकी का अध्ययन करने जा रहे हैं और यह पुस्तक पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है, इसलिए हमारे लिए यह बहुत ही आशीषमय पुस्तक है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम इसके परिचय को देखें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। अब तक के अध्ययन में आपने हम सबों की सहायता की है। उत्पत्ति से लेकर के जकर्याह की पुस्तक तक को हमने पढ़ा है, सीखा है, अध्ययन किया है। आज जब हम मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन करना आरंभ करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा, आप प्रत्येक की सहायता करें ताकि हर एक जीवन मलाकी नबी की पुस्तक के द्वारा से अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सके। हर एक से आप बोले और बातचीत करें, आप मुझे सिखाएं, मुझसे बातचीत करें, ताकि हर एक प्राणी आप में धन्य होने पाए। इस घड़ी प्रभु जी, हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में पड़े हैं, जो निराश हैं, जो तनाव में हैं और किसी प्रकार से अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं, आप उनके जीवन से बातचीत करें ताकि वे समझने पाए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप चाहते हैं कि वे अपने जीवन में शांति पाएं, उद्धार पाएं, और ये सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा संभव है। हाँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत करें, हम सबों को इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा से आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, अब तक हम सबों ने उत्पत्ति से लेकर के जकर्याह की पुस्तक तक का अध्ययन किया है। आज हम पुराने नियम में इसके अंतिम पुस्तक मलाकी से अध्ययन करेंगे। अब हम पुराने नियम के अंतिम पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। मलाकी पुराने नियम पर पर्दा गिराता है। वह मसीह के आगमन की भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं के क्रम में अंतिम भविष्यवक्ता है। यदि हम मलाकी से पूर्व 1000 वर्ष की भविष्यवाणियों को एक के बाद एक देखें, तो पाएंगे कि परमेश्वर मसीह के आगमन की भविष्यवाणियों में उत्तरोत्तर जोश बढ़ाता जा रहा है और मलाकी अंतिम भविष्यवक्ता है। मैं उसे एक प्रकार का रेडियो उद्घोषक मानता हूं जो प्रभु यीशु के आगमन की सूचना देता है। ऐसा लगता है कि वह कह रहा हो, अब 400 वर्ष बाद ही आप किसी उद्घोषक को सुनेंगे जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा। परंतु 400 वर्ष एक बहुत लंबा समय है। यद्यपि हम मलाकी के विषय में कुछ नहीं जानते, वह एक बड़ा ही रोचक चरित्र है। मेरे मित्रों, हम देखेंगे कि वह बड़ा ही विनोदी स्वभाव का मनुष्य है। मेरे विचार में आप विनोदी स्वभाव के बिना एक भविष्यद्वक्ता या प्रचारक नहीं हो सकते। यदि आपको बाइबल में विनोद की अनुभूति नहीं होती है, तो आप बाइबल ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। मलाकी निश्चय ही संदेशवाहक था, जैसा कि मलाकी का अर्थ है संदेशवाहक। सेप्टुजिंट में मलाकी को स्वर्गदूत कहा गया है, क्योंकि संदेशवाहक का यूनानी अनुवाद स्वर्गदूत है। संदेशवाहक एक मनुष्य भी हो सकता है या कोई अलौकिक प्राणी। कुछ कलीसियाई पितरों ने तो यहां तक सोचा कि मलाकी की पुस्तक का लेखक कोई स्वर्गदूत रहा है, परंतु इसका कोई भी आधार या प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि इस पुस्तक का लेखक गुमनाम है। उनका तर्क है कि मलाकी का अर्थ संदेशवाहक है और यह नाम पुस्तक का शीर्षक है, लेखक का नाम नहीं है। इसमें शक नहीं कि मलाकी के बारे में हमारी जानकारी उतनी ही सीमित है जितनी स्वर्गदूतों के बारे में है। यदि इसका लेखक गुमनाम है तो भविष्यद्वक्ताओं में केवल यही एक गुमनाम पुस्तक होगी, और निश्चय ही मलाकी अंतिम भविष्यद्वक्ता होने के कारण नियम से भिन्न होना नहीं चाहेगा। मेरे प्रियो, इसका भी एक कारण है कि हम मलाकी के बारे में अधिक नहीं जानते। वह परमेश्वर के संदेश का वाहक है, परंतु हमें संदेश वाहक के विषय अधिक जानकारी की चिंता नहीं है। डाकिया जब आपके पास पत्र लेकर आता है, तब आप डाकिये के पिता का, गोत्र का और कुटुंब का नाम नहीं पूछते हैं। आपका संपूर्ण रुचि पत्र में और उसके संदेश में होता है। पवित्र आत्मा मरकुस रचित सुसमाचार में यही विधि काम में लेता है। वहां प्रभु यीशु के वंशावली नहीं दी गई है। इसका कारण है कि चारों सुसमाचार वृत्तांतों में प्रभु यीशु का चित्रण भिन्न भिन्न रूप में किया गया है। मत्ती प्रभु यीशु को राजा के रूप में प्रकट करता है, इस कारण उसे राजा की वंशावली में होना अति आवश्यक है। मत्ती रचित सुसमाचार एक अध्याय उसके एक पद में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यहां पर मुख्य बात है कि वह दाऊद की संतान है, क्योंकि वह राजा है। अब मरकुस उसे परमेश्वर का दास के रूप में दर्शाता है, इस कारण उसे उसकी वंशावली दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवक के लिए आवश्यक है कि वह काम पूरा करे। यदि कोई आपके पास नौकरी ढूंढने के लिए आता है, तो आप उसके बारे में इससे अधिक जानना नहीं चाहेंगे। मरकुस का उद्देश्य भी यही दर्शाना है कि प्रभु यीशु काम करने में समर्थ था और उसके काम पूरा किया गया है। कहने का अर्थ है कि जो काम उसको दिया गया था, उसने उस काम को पूरा किया। इसी प्रकार मलाकी की पुस्तक में लेखक की अपेक्षा संदेश अधिक महत्वपूर्ण रखता है, या यूं कहें कि हमारे लिए यह अति महत्व रखता है। मलाकी की पुस्तक के लेखन काल में भी मतभेद है। मेरे विचार में इसकी तिथि है 397 ईस्वी पूर्व, वरन इससे कुछ पहले की। रूढ़िवादी विद्वानों के विचार में मलाकी ने 5वीं शताब्दी के अंत में भविष्यवाणी की थी। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि मलाकी नहमिया, हग्गै, जकरिया के साथ का भविष्यद्वक्ता था, जो जरुबाबेल और महायाजक यहोशू के समय में भविष्यद्वाणी करते थे। मेरे मित्रों, मलाकी भविष्यद्वाणी के संग्रह का अंत करता है। जैसे नहमिया पुराने नियम की इतिहास की पुस्तकों में अंतिम है, मलाकी ने नहमिया के शासन काल में या उसके तुरंत बाद भविष्यद्वाणी की। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि मलाकी संदेश वाहक था, परंतु उसके संदेश का महत्व मुख्य है। वह स्वयं संदेश वाहक है, और संदेश वाहक शब्द का उपयोग वह 3 करता है, और अन्य संदेश वाहकों में 3 महत्वपूर्ण संदर्भ देता है। पहला है मलाकी नबी की पुस्तक 2:7 में, वह याजक को यहोवा का दूत अर्थात संदेशवाहक कहता है। लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर के वचन का प्रत्येक संदेशवाहक, प्रत्येक गवाह, प्रत्येक शिक्षक परमेश्वर का दूत अर्थात संदेशवाहक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सातों कलीसियाओं को प्रभु का संदेश दिया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:1 में लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। मेरे विचार में यह किसी स्वर्गदूत के लिए नहीं, एक मनुष्य के लिए कहा गया है जो उस कलीसिया का पास्टर था। मैं कई वर्ष से परमेश्वर की सेवा में रहा हूं और पास्टर के लिए यह शब्द दूत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम पास्टर को अनेक नामों से पुकारते हैं, तो उसे दूत कहने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ है, मलाकी यूहन्ना बपतिस्मा के आगमन की घोषणा भी करता है और उसे अपने दूत कहता है। मलाकी नबी की पुस्तक 3:1 में कहता है, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए नियम का मलाकी था और मलाकी ने पुराने नियम में जहां समाप्त किया वहां से उसने काम संभाला। तीसरी बात हम देखते हैं, दूत के तीसरा संदर्भ में वह प्रभु यीशु के विषय कहता है, वाचा का वह दूत। मलाकी की पुस्तक 3:1 में वह कहता है, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। पुराने नियम में परमेश्वर का दूत निश्चय ही देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु है। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप उस बात को देखें जिसके कारण मलाकी बाइबल की मन भावन पुस्तकों में से एक है। परंतु बाइबल में मेरी 65 मन भावन पुस्तकें और भी हैं। यह बात है मलाकी का प्रसन्नचित स्वभाव और उसके श्रोताओं में संदेश सुनाने के लिए उसमें ऐसे स्वभाव की आवश्यकता भी थी। उसकी प्रचार विधि है प्रश्न पूछना और उनका उत्तर देना। वह पहले परमेश्वर के संदेश को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता है, तदुपरांत वह इसराइल की ओर से उत्तर देता है जो अति अभिमान से पूर्ण और व्यंगात्मक है, वरन तिरस्कार पूर्ण, हठीला और घृष्ट है। परंतु विश्वास करें, मलाकी के उत्तर कुछ परमेश्वर की ओर से भी हैं, तो वास्तव में वे परमेश्वर का व्यंग हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस छोटी पुस्तक का आनंद अवश्य लेंगे, क्योंकि यह पुस्तक वास्तव में एक महान पुस्तक है। तो मेरे मित्रों, इस छोटे परिचय के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और मलाकी नबी की पुस्तक 1 में आते हैं। इसका विषय है इसराइल के लिए परमेश्वर का प्रेम, याजकों को अशुद्धता के लिए झिड़कना। मलाकी उन सब समस्याओं की चर्चा करेगा जो नहमिया के सामने थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि मलाकी उसी युग में भविष्यवाणी कर रहा था। सबसे पहली समस्या थी याजक वृत्ति को अशुद्ध करने की। दूसरी समस्या थी विदेशी महिलाओं से विवाह और स्वजाति पत्नियों को तलाक देना। इसके लिए परमेश्वर कठोरता का व्यवहार करेगा। मुझसे तलाक के विषय में विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, तो मैं केवल वही कहता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर तलाक के विषय में कहता है। तीसरी समस्या थी कि वे अपना दशमांश और भेंट नहीं ला रहे थे। आप निश्चय जानिए कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के विषय लोग कैसे मूर्ख बनाते हैं। इस संबंध में परमेश्वर जो कहता है वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। आइए हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक एक अध्याय उसका एक पद। लिखा है, मलाकी के द्वारा इसराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। मलाकी का अर्थ है मेरा दूत। वह इसराइल के लिए परमेश्वर का अंतिम संदेश लाता है। लिखा है, इसराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। भारी वचन का अर्थ है परमेश्वर का दंड। परमेश्वर उन्हें कठोर डांट सुनाएगा। मेरे मित्रों, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि मलाकी संपूर्ण इसराइल अर्थात 12 गोत्रों को संबोधित करता है। यह स्पष्ट है कि इसराइल के गोत्र खोए नहीं थे। प्रत्येक गोत्र के लोग वहां लौट आए थे। मेरे विचार में मलाकी का संदेश यहां से निकलकर उन लोगों में भी गया जो स्वदेश नहीं लौटे थे। नहमिया की पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि स्वदेश लौटे इसराइलियों में और विदेशवासी इसराइलियों में संपर्क बना हुआ था। संदेशवाहक और यात्री इसराइल और बंधुआई के देश में जहां से वे लौटे थे लगातार आते जाते रहते थे। हम इसे देखेंगे। अतः मलाकी का संदेश 12 गोत्रों में पहुंचा था, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह सिर्फ कुछ ही गोत्रों के लिए है। मेरे मित्रों, हम इस मलाकी की पुस्तक में एक अद्भुत बातों को देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर इसराइल के प्रति प्रेम रखता है, किस प्रकार वह याजकों को फटकार लगाता है। आज हम सबके जीवन के लिए भी यह अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम करते हैं। क्या आज मुझे और आपको भी फटकार की आवश्यकता है? मैं नहीं जानता कि आप इसे पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है और वह चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके डांट को सुने और उसकी ओर लौट आए। मेरे मित्रों, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है और बच्चा जब कुछ गलती करता है तो वह उसे डांटता है, उसे इसलिए डांटता है ताकि वह सुधर जाए, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करे और उससे प्रेम करे। कई बार बच्चे रुष्ट हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं और पिता या बड़ों की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पिता अपने बेटे को भूल जाए। एक समय ऐसा आता है कि पुत्र लौट करके आता है और परमेश्वर उसे क्षमा कर देता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप भी इसी प्रकार से भटक गए हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को आपने तोड़ा है और आप उस गंदे मार्ग पर बहुत दूर निकल गए हैं, परमेश्वर आपके जीवन को चाहता है। वह चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने, उसकी ओर फिरें। जिस प्रकार से इसराइली लोग परमेश्वर के निकटता में आए, उन्होंने मन को फिराया और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार इसराइली परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन के लिए भी यह अति आवश्यक है कि आप उस परमेश्वर को जानें। यह मलाकी नबी की पुस्तक में कहा गया है कि इसराइली लोग परमेश्वर के लिए दान अर्पण नहीं कर रहे थे, अपना दशमांश नहीं दे रहे थे। आज कई लोग हैं जो इस बात को भूल जाते हैं कि जो कुछ वो कमा रहे हैं ये उनका नहीं है, वह परमेश्वर का है। और परमेश्वर आपसे आपकी पूरी कमाई नहीं परंतु उसका दशमांश चाहता है, ताकि आप उस दशमांश के द्वारा और अधिक आशीषों को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, यह हर एक के लिए अति आवश्यक है कि परमेश्वर के लिए दशमांश उसके भवन में लाएं। और यही भूल बहुत लोग करते हैं और वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं, वे इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप उसके भवन में दशमांश को लाएं, उससे परख करके देखें कि वह आपको दुगुना चौगुना आशीषों से परिपूर्ण करेगा। मैं यहां पर धन बढ़ोतरी के बारे में नहीं कह रहा हूं, परंतु आपसे यह कह रहा हूं कि परमेश्वर का वादा यही है। वह जानना चाहता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। वह जानना चाहता है कि आप उसके वचन के प्रति कितने सत्य हैं। यदि आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो निश्चय जाने कि प्रभु के आशीषें आपके निकट है, आपके करीब है। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को देना चाहता है। आज समय आ गया है कि हम अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर यही हमारे जीवन में देखना चाहता है। मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप मलाकी के अध्ययन में आप मेरे साथ होंगे। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो।
पालन हा कारण हा।